بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناهم من عبادنا، وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان و انعام فرمایا کہ اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا. جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہوں سے مدارس میں پہنچے تھے، تو اس وقت آپ کے ان جگہوں میں، ان خاندانوں میں، ان بستیوں میں، محلوں میں، برادریوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سے نوعمر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے آپ کا انتخاب فرما کر آپ کو حصول علم دین کے لیے وہاں پہنچایا. پھر جس وقت آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے طلبہ تھے. جوں جوں آپ مدرسے کے نصاب کے مختلف مراحل کو پار کرتے گئے، ان رفقا میں سے بہت سے وہ ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. ان کو گویا اس نصاب کی تکمیل کا موقع نہیں ملا اور یہ سعادت میسر نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں میں بہت سے وہ ہوں گے جو بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑی اچھی استعدادیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس علم کی خدمت کا اور دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ان کو موقع میسر نہیں ہوا. گویا یہ سعادت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. بھائی، یہ تو مختلف سعادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ مرحلہ بھی عطا فرمایا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ اپنے اس علم سے اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان تک اس امانت کو پہنچا رہے ہیں. گویا یہ مختلف انعامات اور احسانات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرمائے، اور اب اس وقت آپ ان علمی خدمات کو جو انجام دے رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے. اب اس خدمت کو ہمیں کس طرح انجام دینا چاہیے؟ تو ایک تو چیز وہ ہے جس کا تعلق تدریس کے طریقے سے ہے کہ تدریس کے لیے کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت مختلف انواع کے اہل علم یہاں موجود ہیں، اس سے بحث کی یہاں ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اولین مرحلے میں ہم اس کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں. کوئی بھی کام جب تک کہ خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اسی سے اپنے اس کام کا بدلہ اور معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے، جس کو احتساب کہا جاتا ہے، نہ کیا جائے، وہاں تک اس کام کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی ضروری ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ مدارس کا، اور یہ گویا یوں سمجھیے کہ درس نظامی کا یہ سلسلہ جو ہمارے اکابر نے جاری فرمایا ہے، تو اس کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہی بھی ہے کہ جن حضرات نے اپنے آپ کو اس کے اندر لگایا، اپنے صلاحیتوں کو اس کے لیے پیش کیا، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ और गया बड़े इशार और कुर्बानी के साथ इन खिदमात को अंजाम देते हैं। हमारे असलाफ के बेशुमार वाक़यात आपके इल्मों में भी होंगे, किताबों में भी लिखे हुए हैं कि उनको पेशकश की गई। देखो, दुनिया के जो उलूम हैं उनकी बुनियाद ही हुजूज के ऊपर है, यानी वह आदमी अपने नफ्स और जो है अपने जिस्म के तकाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह पूरा करेगा और किस तरह वह ऐसे असबाब वसाइल मुहैया करेगा जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो इशरत हासिल की जाए। ये दुनिया में जो असरी उलूम में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई और कोई जो है चीज़ हासिल करता है दुनियावी उलूम की, उनका मुंतहा मकसूद सिर्फ यही होता है कि बस वो इन उलूम के ज़रिए से ऐसे असबाब वसाइल मुहैया करें जिनसे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम और राहत के साथ गुजारा जा सके। जबकि हमारा इल्म जो है बिल्कुल उसके बरक्स है। हमारे उलूम इल्म दीन के अंदर तो हुजूज नहीं बल्कि हुकूक की पहचान कराई जाती है अल्लाह के बंदों के, बंदों में भी मुख्तलिफ जो हैं, और उन हुकूक की अदायगी की तरफ मुतवज्जे किया जाता है कि भाई हम इन चीज़ों से वाकिफियत हासिल करें। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये इखलास जो है वो बुनियादी नुक्ता है हमारे अकाबिर और असलाफ के यहाँ, कि गोया इस इल्म में उसको मलहूज रखा जाता है। चुनांचे उन हजरात के वाक़यात बेशुमार हैं कि उनको बड़ी बड़ी पेशकशें की गई, जहाँ वो इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे थे बहुत कलील मुआवजे के अंदर, वो इतना जो बड़ी मुश्किल से वह उसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। ऐसी हालत में भी जब उनको पेशकश की गई, ऐसा नहीं कि कोई उनकी मजबूरी थी और मजबूरी की वजह से ये काम अंजाम देते थे, नहीं, बल्कि बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि जितनी तनख्वाह वो पा रहे हैं उससे कई गुना मुआवजा दे करके उनको किसी जगह पर बुलाया जा रहा है, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई हमें महसूस हो रहा है कि हमें यहीं इस खिदमत को अंजाम देना चाहिए। ये गोया उनके इखलास की अलामत थी। ये चीज़ हमारे असलाफ और अकाबिर के यहाँ बुनियादी हैसियत रखती है। वो हम कभी भी तनख्वाहों पर, मुआवजे के ऊपर और अपने लिए गोया ऐशो इशरत के, राहत के सामान व असबाब मुहैया करने की तरफ नज़र नहीं करते थे। आज धीरे धीरे हमारे मदारिस के अंदर भी इस नज़रिए में बुनियादी फ़र्क आता जा रहा है। गोया अब हम लोग जो हैं बजाय इसके कई इन चीज़ों को मलहूज रखते जिनको हमारे अकाबिर ने पेश नज़र रखा था, हम दूसरी चीज़ें सोचने में पड़ गए। हमें कहीं से अगर ऐसी कोई पेशकश की जाती है तो फौरन हम उसकी तरफ लपक कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि जहां ये खिदमत हमारे ज़रिए से अंजाम दिलवाई जा रही है वहां महसूस करते हैं कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। उसके बावजूद चूँकि जहां से हमें बुलाया जा रहा है वहां हमें गोया इसके ऐसे असबाब ज़्यादा मैसर हैं, गोया हमारी सोच में अब धीरे धीरे तब्दीली आती जा रही है। और ये जो यूँ समझिए कि ये जिस मशक्क़त मेहनत के साथ हम ये कुछ करते जा रहे हैं वो भी अब एक मजबूरी का दर्जा बनता जा रहा है। उनके लिए मजबूरी का दर्जा नहीं था, लेकिन हमारे के लिए अब हम महसूस कर रहे हैं कि ये मजबूरी का दर्जा होता जा रहा है, कि हम ये गोया समझते हैं कि इसके अलावा कोई और शक्ल हमारे लिए हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम उसके ज़रिए से गोया अपने माश को बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो बहरहाल ये बहुत बुनियादी फ़र्क है जो हमारे और हमारे अकाबिर के नज़रियात में धीरे धीरे आता जा रहा है। इसकी तरफ भी ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है, और इसीलिए उन हजरात ने इखलास के साथ इनके कामों को अंजाम दिया तो उनमें इशार गोया अपनी ज़रूरतों के मुकाबले में दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देना, तलबा के ऊपर जो है मोहब्बत और शफ़क़त से तवज्जो करना, राफत और रहमत से उनके साथ पेश आना, ये गोया उनके इसमें बुनियादी हैसियत रखता था। अब वो चीज़ें नहीं रही, उनकी उनकी निगाहों में कोई गोया इस बात का की बड़ी अहमियत थी कि किस तरह मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी और अमली एतबार से फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो ये ज़रूरत है, हमें हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई देखो, हमारे मदारिस के अंदर तीन तीन किस्में हैं, एक तो इंतज़ामिया है, दूसरे असातिज़ा हैं और तीसरे तलबा हैं। तीनों को अपने आप को तीनों ये समझें, तीनों में से हर एक वह दूसरे दो फरीक का अपने आप को वह एहसानमंद समझें कि उनका हम पर एहसान है, वह असातिज़ा यूँ समझें कि हम पर तलबा का एहसान है, उन्होंने अपने कुलूब की ज़मीन को हमारे उलूम की तुखमरेजी के लिए पेश किया। अगर ये न होते तो हमारे हम अपने ही उलूम को कहाँ पहुँचाते और किस तरह किन लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचाया जाता, गोया इनका एहसान है। इसी तरह इंतज़ामिया का भी वो अपने आप को ममनून और एहसानमंद समझे कि इस इंतज़ामिया ने जो है उसके लिए बहुत सारे असबाब वसाइल फराहम करके एक ऐसा माहौल और एक ऐसी फिज़ा हमारे लिए कायम कर दी कि जिसमें हम इत्मीनान और सुकून के साथ अपने उलूम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमें ये फिज़ा मैसर न होती, मदारिस में जहाँ हम ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस इत्मीनान के साथ ये काम कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ मौका न दिया जाता तो मालूम नहीं हम क्या करते और किस तरह जो है अपनी इन उलूम को अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुँचाते। ये गोया इंतज़ामिया का एहसान है। आजकल क्या हो गया कि अब ये जैसे असातिज़ा हैं, इनको इन दोनों का एहसान अंदर होना चाहिए, उसके बजाय दोनों की शिकायतें चलती हैं। असातिज़ा दोनों की शिकायतें करते हैं, तलबा पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब भी बैठेंगे दो उस्ताद या उनका कोई दो चार आदमी बैठेंगे, उनके मौजू बस यही होगा कि बस ये कुछ करते नहीं है। गोया हम तो सब कुछ कर रहे हैं, इनकी तरफ से गोया हमें जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मिलता नहीं। इसी तरह इंतज़ामिया के मुतालिक भी कि भाई जहाँ बैठेंगे तलब असातिज़ा दो चार, तो इंतज़ामिया ही की बुराई उनके पेश नज़र होगी, वो हमें ये सहूलत नहीं पहुँचाते हैं, ये सहूलत नहीं पहुँचाते हैं, यूँ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ यूँ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ यूँ बेइंसाफ़ी की जा रही है। गोया एक शुक्र का जज्बा होना चाहिए था और अल्लाह ताला ने ये मौका जो हमें फराहम किया, इसलिए कि जो लोग इस तरह की नाशुक्रियों में मुबतला होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं कि ये नेमत जब छिन जाती है तो फिर क्या होता है। वो तो जिनको इस कभी अपनी नाशुक्रियों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात में मुबतला किया जाता है जिसकी वजह से ये खिदमत उनके हाथ से छूट जाती है, तब उनका क्या हाल होता है देख लीजिए, तब अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया था कितना कीमती था और अल्लाह की अल्लाह का कितना बड़ा इनाम और एहसान था जिसकी नाकदरी की गई। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हमारे हज़रत फरमाते थे कि जिन जिन दो गिरोहों का एहसानमंद होना चाहिए था उसके बरखिलाफ उसकी शिकायत। यही हाल तलबा का है, तलबा को चाहिए कि वो अपने आप को असातिज़ा का ममनून और एहसानमंद समझें और इंतज़ामिया का भी ममनून और एहसानमंद समझें। इंतज़ामिया का तो वही, इंतज़ामिया ने हमारे लिए सारे इल्म हासिल करने के लिए असबाब और ये वसाइल मुहैया किए हैं, वरना अगर हम अपने तौर पर इसके लिए आगे कुछ करना चाहते तो इन सारे असबाब और वसाइल हम अपने लिए जमा कर सकते नहीं थे, ये यूँ समझे। और साथ ही साथ असातिज़ा का भी अपने आप को एहसानमंद और ममनून समझें कि भाई असातिज़ा हमारे लिए मेहनत करके हमें इल्म की राह हमारे लिए आसान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही नाशुक्री वाली बातें चल रही है। आज ज़्यादातर जहाँ बैठेंगे दो तालिब इल्म या चार तालिब इल्म तो उनके गोया मजलिस के अंदर मौजू बहस दो ही गिरोह होंगे, असातिज़ा की बुराई होगी, गीबत होगी, या इंतज़ामिया की गीबत होगी, हैं ये हुआ। और रहा इंतज़ामिया, तो इंतज़ामिया को भी इन दोनों का ममनून और एहसानमंद होना चाहिए कि भाई देखो असल तो यही है, पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला इन्हीं दोनों गिरोहों से कायम है, इनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमको ये मौका अता फरमाया कि इनके लिए हम एक अच्छा माहौल और जो है अच्छी फिजा मुहैया कर रहे हैं, और इन्हीं के नाम से लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, और लोग इन्हीं की वजह से गोया हमारी इन अपीलों को कबूल करते हुए हमारा ताउन करते हैं, हाथ बटाते हैं, और हमने ये जो असबाब वसाइल मुहैया किए और लोगों ने इसकी मुहैया करने के मामले में हमें जो ताउन किया, हमारा साथ दिया, वो सिर्फ़ इनकी वजह से। अगर ये न होते तो लोग हमारी तरफ ज़रा बराबर भी जो है तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं थे इंतज़ामिया को। लेकिन फिर यहाँ पर भी वही बात आती है, इंतजामिया भी हमेशा जो है शाकी और जो है नाला रहती है, सातिजा से भी और तलबा से भी। तो गोया पूरा बकौल हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, आवा का आवा खराब है। नाशुक्री जो है ना, नाशुक्री का एक मिजाज माहौल, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। देखो ये शैतान इंसान की राह जो मारता है ना, वो पहली राह मारता है नाशुक्री की राह से। जो कुरान में है शैतान को जब अल्लाह तबारक तआला ने अपनी बारगाह से मर्दूद किया था, तो उसने कहा था लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम वमिन खल्फिहिम वअन अयमानिहिम वअन शमाइलिहिम फला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये बारी ताला मैं इनको बर्बाद करने के लिए आगे और पीछे और दाएं और बाएं से इनके ऊपर हमला करूंगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इनकी बड़ी तादाद वो होगी जो नाशुक्री का शिकार होगी। और वाकया ये है कि इंसान के मिजाज में नाशुक्री वह बैठी हुई है, बहुत कम है जो अल्लाह ताला के इन एहसानात को मद्देनजर रखता। हमारा हाल तो ये कि मामूली मामूली बातों में भी हम वही किसी अपनी किसी हाजत के मुतालिक अल्लाह ताला से जब दुआएं करते हैं, कई रोज तक दुआ का सिलसिला चल रहा है, यूं हो जाए यूं हो जाए, और जब वो काम हो गया, होते ही उस काम के होने पर एक मरतबा भी भूले से हमारी जबान से ये नहीं निकलता अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु वलकल शुक्र कुल्लुहु, वो भूल करके दूसरी हाजत को मांगने में लग जाते। अभी सफ़र के लिए निकलेंगे, स्टैंड पर बैठे हैं, अल्लाह कोई अच्छी सवारी मिल जाए, अल्लाह कोई अच्छी सवारी मिल जाए, अल्लाह कोई अच्छी सवारी, और सवारी मिलते ही ये सब दुआ अब तक जो 10 मिनट से 15 मिनट से जबान के ऊपर दिमाग में यही एक फिक्र सवार था, उसको ऐसे भूलते हैं जैसे कि ये नेमत हमें मिली ही नहीं। एक मरतबा भी हमारी जबान से इस सवारी के मिलने पर अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु वाला जुमला निकलता नहीं है। फिर बैठने के बाद फिर यूँ कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ जाना है पहुँच जाए, अल्लाह ताला आफियत के साथ पहुँच जाए, कोई बीच में रुकावट न हो, बस दुआएं करते जा रहे हैं यहाँ तक कि जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद कभी भूले से ही ये पहुँचने पर अल्लाह की इस नेमत के हुसूल पर अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु, बस हर जगह हर मामले में हमारा एक मिजाज ये बन गया। बेशुमार अपनी हाजतों का अल्लाह से सवाल भी करते हैं, और जब वो मिल जाती है तो कभी एक जुमला भी हमारी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्दु का निकलता नहीं है। गोया हमारे मिजाज में नाशुक्री बसी हुई है, ज़रूरत है कि इसकी तरफ खास तवज्जो की जाए। और अल्लाह ताला ने ये जो मौके अता फरमाए हैं उन मौके की कदरदानी की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह तूने महज फजल से, मैं तो इस लायक नहीं था और न मैं इन असबाब को मुहैया कर सकता था, तूने महज अपने फजल से ये सारी चीज़ें मुझे अता फरमाई हैं, अब तू ही मुझे उसकी कदरदानी की और इससे जैसा जिस नौका और जिस अंदाज से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और उसकी गोया जितनी कदर करनी चाहिए उसकी मुझे तौफीक अता फरमा। ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। हमारे अकाबिर का एक मिजाज ये था कि वह अल्लाह की छोटी सी नेमत पर भी बहुत ज़्यादा कसरत से शुक्र अदा किया करते थे, और हमारा मिजाज ये है कि बड़ी से बड़ी नेमतों को भी दरखुर एतना नहीं समझते। इसलिए अल्लाह ने ये जो मौका आपको अता फरमाया, वाकया ये है कि ये बहुत बड़ी सआदत है। फिर ये कि ये माहौल दीन का माहौल, बेट आज क्या है दुनिया के अंदर बेदीनी लामली, बल्कि यूँ समझिए कि गुनाह गुनाहों का गोया एक अंबार है। अल्लाह ने गोया यूँ समझिए एक समंदर के अंदर कोई जजीरा हो और कोई आदमी उस जजीरे पर हो तो समंदर की मौजों से अपने आप को महफूज समझता है। ये दुनिया जो है ना गुनाहों में गोया बसी हुई है। अल्लाह ने हमें मदरसों में बैठा करके बेशुमार ऐसी बुराइयों से बचने का मौका मुफ्त में अता फरमाया। ये नेमत तो हज़ारों लाखों रुपये खर्च करके हासिल होती तो भी कम थी, अल्लाह ने मुफ्त में महज इस दीन की खिदमत के सदक़े में अल्लाह ने ये चीज़ अता फरमाई है, इसकी भी हमें कदर करनी चाहिए। आज हम नाकदरी में ऐसे गया घुसे हुए हैं और ऐसे अंदर गर्क हैं कि हमें अल्लाह की नेमतों की तरफ ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं। निकलो बाहर, निकलेंगे ना जब ये, और दुनिया जो है ना बड़े से बड़ा मालदार होगा, बड़े से बड़ा रईस होगा और लाखों करोड़ों का मालिक होगा, लेकिन वो अपने कारोबार में ऐसा घुसा हुआ है कि उसको लफ्ज़ अल्लाह कहने की भी फुर्सत नहीं। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ अपनी याद में, अपनी इताअत और फरमाबरदारी में मशगूल रखा, उसके साथ साथ जो है हमारा काम भी चल रहा है। ये अल्लाह का क्या कम एहसान है, अल्लाह के इस एहसान पर हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम है। हम हमेशा इन चीज़ों का इस्तेज़ार हो, और इस्तेज़ार के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी को पूरी अमानत और दियानत के साथ अदा करने की तरफ तवज्जो करो। इस वक्त ज़रूरत है उम्मत के अंदर कि उम्मत के इन नावाकिफों और जो इल्म से नादान हैं, जाहिल हैं, उनको वाकिफ़ किया जाए। अब तो सारी दुनिया जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ कमर कस के खड़ी हुई है, और यहाँ हमारे इस मुल्क में भी जो लोग मकातिब में काम करते हैं, वो जो मदारिस में काम करते हैं, वो हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगने की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको जहाँ मदारिस में काम करने का मौका दिया, जो तलबा आपके हवाले किए गए हैं वो उम्मत की बहुत बड़ी अमानत है, उनकी तरबियत की जाए, उनको बेहतर से बेहतर उलूम से आरास्ता किया जाए, आमाल उनकी तरबियत की तरह। आज क्या है, असातिज़ा को बिल्कुल परवाह नहीं कि हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा उसकी अमली हैसियत क्या है, वो पांच वक्त की नमाज जमात के साथ सफ़े अव्वल का अहतमाम करते हुए, तकबीर उला का अहतमाम करते हुए पढ़ रहा है, सुन्नतों का अहतमाम, उस्ताद को कोई नहीं, बल्कि अब मामला उलट गया, बल्कि कोई तालिबे इल्म अगर सुन्नतों का अहतमाम करता है तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसके बजाय दरसगाहों में असातिज़ा की तरफ से ऐसे तलबा की हौसला शिकनी की जाती है। बड़ा सूफी बन गया है, पहली सब में नमाज पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर पहली सब में नमाज पढ़ने के ऊपर हमारे मदरसों के अंदर दरसगाह में उस्ताद की तरफ से इस तरह के अगर ताने सुने जाएँ तो क्या ये मदरसे इस लायक हैं कि उनको बाकी रखा जाए? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है जो हमारे यहाँ हो रहा है, और सब देख रहे हैं लेकिन कोई उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। ये तलबा जो हैं इनके ऊपर खूब मेहनत कीजिए, इनकी तालीम पर भी, इनकी तरबियत पर भी। ये तरबियत के मामले आजकल आम तौर पर असातिज़ा अपने आप को यूँ समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इंतज़ामिया का काम है। भाई इंतज़ामिया जो है चंदा भी लाएगी, इमारतें भी बनाएगी, खाना भी पकवाएगी, सारे इंतज़ाम भी करेगी, और फिर वो तरबियत का काम भी वही करेगी। अरे भाई वो तो आपको करना है, आप खाली यूँ समझते हैं कि किसी एक घंटे में आकर के पढ़ा दिया और वो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? नहीं, पहले ज़माने के असातिज़ा क्या थे, जैसा मैंने कहा ना, इशार और इखलास का पुतला थे, वो पढ़ाते भी थे, तरबियत भी करते थे, और उनकी गोया किफालत भी करते। अल्लाह ने उनको जो कुछ दिया था, थोड़ा बहुत माल होता था, उस माल से उनकी ऐसी किफालत करते थे कि खुद भूखे रहते थे और उनको खिलाते थे। वो ये इशार था, आज हमें वो चीज़ें भी बाकी नहीं रही, ज़रूरत है। एक ऐसे मुखलिसीन अगर दो चार भी किसी मदरसे में पैदा हो जाएं तो इंशाल्लाह उस मदरसे की तरक्की के लिए उनका वजूद काफ़ी है। ज़रूरत है कि हम इसकी तरफ तवज्जो करें, और अल्लाह ने ये जो मौके अता फरमाएं उसकी कदर पहचानें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस फ़र्ज़ मनसबी को अदा करने की, और हमें अल्लाह ने ये तलबा की शक्ल में आइंदा हमें अपने लिए एक सदक़े जारिया का सिलसिला जारी करने का जो मौका दिया। एक बच्चा, हर बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। हमारी जो नसबी औलाद है ये रूहानी औलाद है, हम उनके गोया रूहानी बाप हैं, और इनमें से कोई एक भी अगर ऐसा निकला जिसने आगे जाके उम्मत की गोया इसलाह का फरीजा अंजाम दिया तो गोया उसके तुफेल में हमारा भी काम बन जाएगा। हर एक पर हमें इस तरह मेहनत करनी है, तवज्जो देनी है, और उनके अखलाक की दुरुस्तगी, उनके तालीम के ऊपर मेहनत, उनकी हर चीज़ पर निगरानी, वो ज़ाया और बर्बाद न हो। ये मदरसे में आ गया, ये हमारी अमानत है, इस अमानत को पूरे तौर पर संभालने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व लाना मुहम्मद व अला आलि سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غیر غالین ولا مدلین سلما لأولیائک و حربا لأعدائک نحب بحبک من احبک و نعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا افضل ما توتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو نے جن انعامات سے ہمیں نوازے رکھا ہے اے اللہ اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا اے اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس نسبت سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر عائد فرمائے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ طلبہ کی شکل میں جو امانتیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں اے اللہ ان کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے اے اللہ ویسا حق ادا کرنے کی اپنے اسلاف اور اے اللہ اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اس گھر میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، گھر کے رہنے والے تمام چھوٹوں بڑوں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں سب کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ان کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ان کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، تمام بچوں کو علم و عمل صلاح و تقویٰ کی دولت سے آراستہ فرما کر ان کی بہترین تربیت فرما کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دلوں کا سرور بنا، اور اے اللہ تمام گھر کے تمام افراد کو تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اس مکان کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے اے اللہ ان کو عطا فرما، اور جو شر اور برائی ہو سکتی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے حاسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمناوت شریروں کی شرارت بدخواہوں کی بدخواہی اور رشادوانوں کی رشادوانیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بیماری کا اے اللہ یہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ محض اپنے فضل سے ان وبائی امراض کو دور فرما دے، تیرے تمام بندوں کو جو ان کا شکار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ سب بیماریاں پھیل رہی ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ.